छंद, यस देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो ये अनुष्टुप छंद, तो उसी छंद में ये श्लोक 2, 3 और 5। और आने वाले श्लोकों के भी छंद सब अलग अलग हैं। जैसे जैसे उन श्लोकों तक पहुंचेंगे वैसे वैसे बताएंगे। तो दूसरे हाँ, तो ये फिर से ऊपर रख लेना ताकि सभी लोग देख सकें, ये चार्ट ये वाला। उस टेबल के ऊपर, हाँ वही रख लो, उसके वही केवल वो इधर रख दो। मैंने कहा था वहीं पे रखना और टेबल को वहीं था जहाँ था उसके ऊपर रखना, एक फिसल जाएगा, गिर जाएगा। यहाँ पर, यहाँ पर रख दो, यहाँ यहाँ यहीं पर, यहाँ पर, अच्छा वहाँ उधर इसको। तो पहले श्लोक में चर्चा थी त्रिदंडी स्वामी के लक्षण। तो भक्तिविनय ठाकुर कहते हैं त्रिदंडी स्वामी लक्षण आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण है ये। और फिर श्लोक 2, 3, 4, मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियम। अब ये चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं दूसरे श्लोक के साथ, जो कि अत्याहार प्रयासश्च इन शब्दों से शुरू होता है। और इस श्लोक का विषय है भक्तिर प्रतिकूल षड्गुण, वो 6 गुण जो कि भक्ति के विरुद्ध हैं या प्रतिकूल है, या इसे षड दोष भी कहते हैं। तो ये दूसरे श्लोक का विषय है, ठीक है। षड दोष, षड मतलब 6। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। आप में से हर एक इस श्लोक को बोलेंगे यहाँ से शुरू करके एक 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 यहाँ तक पहुँचते हुए। Yeah. शब्दार्थ
अधिक
भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना, अधिक उद्यम तथा बातें करना, आसक्ति आग्रह, अत्यधिक उपेक्षा, संग्रह, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति च था, अधिक अभिलाषा या लालच च तथा षड्भिः इन छह के द्वारा भक्तिमय सेवा क्षति नष्ट हो जाती है। अनुवाद
जब कोई निम्न लिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा छठवा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना।
अभी कौन पढ़ेंगे? तात्पर्य ठीक है। अच्छा, अभी कौन यहाँ पे क्या बताए हैं प्रभुपाद जी? सबसे पहला पॉइंट क्या कहा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में? नहीं, वो बाद में। सबसे पहले क्या कहा है प्रभुपाद ने? क्रम से जाइए। सबसे पहली बात जो तात्पर्य में कही गई है वो क्या है? वो बाद में आएगा ना। अच्छा, हाँ हाँ, वो पर मनुष्य जीवन आज, ठीक है, ओके। और इस सृष्टि की रचना कैसे की गई है? हाँ, और हिंदी में कोई बोलिए, सृष्टि की रचना कैसे की गई है? हाँ क्या लिखा है वहाँ? सृष्टि की रचना कैसी हुई है? तो हरे जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो पहला पॉइंट यह है कि मनुष्य जीवन सरल जीवन और उच्च विचार के लिए है। दूसरी बात कि सृष्टि की रचना भगवान ने इस प्रकार से की है कि बद्ध जीव को कार्य करना ही पड़ता है, परिश्रम करना ही पड़ता है, कोई परिश्रम के बिना रह नहीं सकता। कई बार ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि ये सब बुरे कर्म करने से यदि हम, या बुरे छोड़ दीजिए वो, यदि कर्मों के प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए या कर्मों के फल का भोग करने का अधिकार यदि हमारा नहीं है तो हमें कर्म करना ही क्यों चाहिए? प्रश्न समझे? कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है परंतु कर्म के फल को भोगने का अधिकार नहीं है। जब कर्म के फल को हम नहीं भोग सकते हैं या नहीं भोगना चाहिए तो कर्म ही क्यों करना चाहिए? मदरसन तुम क्यों करना चाहिए? जब ये जैसे कोई बोलता है तुम आओ नौकरी करो लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगा, तो कोई भी कर्मचारी क्या सोचेगा? तो करो क्यों? जब तनख्वाह नहीं मिलेगा तो मैं जाके नौकरी क्यों करूं, है ना? तो उसी प्रकार से कर्म के फल को भोगने का अधिकार नहीं है तो कर्म ही क्यों करना चाहिए? क्या उत्तर? हाँ ये सही है। एक क्षण भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। कौन सा श्लोक? बहुत अच्छा। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। कोई अकर्मकृत नहीं हो सकता। कर्मकृत मतलब जो कर्म में लगा हुआ है, जो कर्म करता है। अकर्मकृत मतलब नहीं करता। नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। तो चाहे कोई व्यक्ति फल के प्रति आसक्त हो या न हो, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे कर्म ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। जीव का स्वभाव ही ऐसे है कि उसे कर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भौतिक देह को साथ में लेकर हर एक जीव कर्म करता है, तो ये दूसरी बात है। आगे क्या बताते हैं भगवान और क्यों करना पड़ता है हर बद्ध जीव को कर्म? क्योंकि वो प्रकृति के गुणों के अधीन होता है, भगवान के बहिरंगा शक्ति के अधीन होता है, और ऐसे शक्ति के अधीन होकर वो कार्य करते रहता है। ठीक है, तो फिर प्रश्न आता है कि भगवान की शक्तियां कौन सी हैं? क्या है भगवान की शक्तियां? तो कौन सी शक्तियां हैं भगवान की? मुकुंद रघुनाथ प्रभु, भगवान की कितनी शक्तियां हैं? नहीं, अभी जो हम पढ़े ना तात्पर्य में, कन्नड़ किताब है, कन्नड़ है ना, तो देखो ना क्या है हिंदी में। हाँ और थोड़ा जोर से बोलो, आश्रम में कितना जोर से बोलते, यहाँ बिल्कुल एकदम उस दिन मैं टॉयलेट में भाग के आया क्योंकि सोचा कुछ झगड़ा हो गया, क्या हो गया, इतना जोर से कोई बात हो रहा था। आधा प्रसाद छोड़ के हम उठ के जल्दी से भाग के, क्या झगड़ा हो रहा है, क्या हुआ? देखो तो मुकुंद रघुनाथ प्रभु थोड़ा आनंद के अवस्था में थे, भाव विभोर। तो क्या थी तीन शक्तियां? तटस्था शक्ति। तो उनके लक्षण क्या है, क्या क्या है ये तीन प्रकार की शक्तियां? सारे जीव लेकिन अंतरंगा और बहिरंगा क्या है? तो तटस्था शक्ति का स्थान क्या है? अंतरंगा और बहिरंगा के बीच में। और बहिरंगा शक्ति क्या है? इस भौतिक सृष्टि को चलाती है ना, और अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में है। ये जीव क्या है? तटस्था। तटस्था का शब्द भेद करके समझाइए क्या मतलब है। तट है, स्थ। स्थ मतलब स्थित। तो स्था क्यों है? स्था, स्थ होना चाहिए, तटस्थ। तटस्था क्यों है? सरल बात, स्त्रीलिंग है इसलिए स्था। तटस्था शक्ति, शक्ति स्त्रीलिंग है ना, है ना? तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, अंतरंग शक्ति नहीं, अंतरंगा, क्योंकि वो शक्ति स्त्रीलिंग है। अंतरंगा बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी, माया देवी। अंतरंगा शक्ति राधा रानी। तो ये तटस्था शक्ति है जो तट में स्थित है। होना चाहिए। तो हम समझ लेना चाहिए तटस्था, बहिरंगा, अंतरंगा। साधारण भाषा में कभी कभी कह देते हैं ये अंतरंग शक्ति है भगवान की। तो जीव की स्थिति क्या है? तट में स्थित होने के कारण क्या स्थिति है जीव की? जीव को किसी न किसी शक्ति के अधीन होना ही पड़ता है, चाहे यहाँ या वहाँ, चाहे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत होना है या बहिरंगा शक्ति के, दोनों में से एक के अधीन होना ही चाहिए जीव को, क्योंकि स्वरूप से ही वो तटस्था है। तट में स्थित होने के कारण वो बीच में नहीं रह सकते, यहाँ या यहाँ, ठीक है? और हम लोग कहाँ हैं? हम सब एक पैर इधर एक पैर उधर, नहीं? ठीक है, तो और क्या बताया है? जब जो ये तटस्था शक्ति है, जब अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है तो क्या अवस्था है? पढ़िए भद्रसेन प्रभु क्या लिखा है। हाँ हाँ अपने वैधानिक प्राकृतिक सक्रियता को प्रकट करते हैं, अर्थात स्वरूप से स्वाभाविक रूप से जीव क्रियाशील है और ये क्रियाशीलता वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत प्रकट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीव बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है वो क्रियाशील नहीं है। जीव का स्वरूप तो वैसे ही रहता है, परंतु वास्तविक जो कार्य होने चाहिए जीव का, जो स्वरूप के कार्य हैं, वो केवल अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत प्रकट होते हैं। और अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होने का मतलब क्या है? भगवान की भक्तिमय सेवा में रत रहना। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा में अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेकर सेवा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? महात्मा। तो आगे और प्रभुपाद जी महात्मा का वर्णन करते हैं। हाँ बढ़ाइए। तो अभी यहाँ क्या कहा है राममूर्ति प्रभु? प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसका सार बताइए। और विशाल हृदय होना मतलब क्या और संकुचित हृदय होना मतलब क्या? तो जो संकुचित हृदय के लोग होते हैं वो किस प्रकार के कार्य में रत रहते हैं? रामभद्र प्रिया प्रभु, अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए रहते हैं। कैसे? कैसे? किस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति? दो प्रकार के होती है, कैसे? व्यक्तिगत और विस्तारित। तो विस्तारित इंद्र तृप्ति के उदाहरण क्या है नीलेश? श्री गोकुलानंद, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद, ये विस्तारित इंद्र तृप्ति के उदाहरण हैं। क्यों क्यों उत्तम श्लोक प्रभु, इनको इंद्र तृप्ति क्यों कहते हैं? हम दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, सूक्ष्म कैसे? वास्तव में इसीलिए क्योंकि ये भी शारीरिक बुद्धि पर ही स्थित होता है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हम अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करना चाहते हैं, भले स्थूल रूप से हो या स्थूल या सूक्ष्म रूप से। जैसे कोई व्यक्ति है, समझो वो राष्ट्रवाद का प्रचार करता है और उसमें लगा हुआ है, तो ये कैसे इंद्र तृप्ति है? तो समझाओ। राष्ट्रवाद, ये कैसे इंद्र तृप्ति हो गया? तो इंद्र तृप्त क्यों हो गया? इसमें क्या, इसमें दोष क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से? मान सम्मान की ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई मान सम्मान नहीं चाहे। देह के स्तर पे ये विचार है। क्यों? राष्ट्रवाद मतलब जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया है वो सबसे महान। तो महान क्या है? राष्ट्र नहीं, मैं महान हूं क्योंकि मैंने जन्म लिया इस राष्ट्र में, तो इसलिए ये राष्ट्र महान है। मैं पास वाले देश में जन्म लिया होता तो मैं क्या बोलता कि वो देश महान है। आज कोई देश है, कल कोई राजनीतिक या ऐसे परिवर्तन हो जाता है, देश की सीमाएं बदल जाती है और फिर वो उस राष्ट्र की बात करेगा, है ना? क्यों? वो मेरा है। तो उसमें वो अहम है, वो भी शारीरिक बुद्धि पर स्थित है। यदि हम वास्तव में सबका कल्याण चाहते थे तो अलग बात है, लेकिन ये केवल उन लोगों का कल्याण चाहते हैं जो मेरे राष्ट्र में पैदा हुए हैं, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ। जनस्य मोहयम अहम मम इति, जनस्य मोह अहम और मम, मैं और मेरा, ये इंद्र तृप्ति है। इंद्र तृप्ति क्या है? मैं मेरा। जब केवल मैं चाहता हूँ शारीरिक स्तर पे, और मेरा ये भी शारीरिक दृष्टि है, ये इंद्र तृप्ति है। और जब हम सोचते हैं मैं अर्थात आत्मा और कृष्ण का, मेरा नहीं कृष्ण का, तो फिर वो भक्ति है। उसी तरह से मानवतावाद, ये क्यों इंद्र तृप्ति कहलाता है? प्रिय गोविंद, राष्ट्रवाद इंद्र तृप्ति है, मानवतावाद मैं मनुष्य हूँ इसलिए मनुष्यों का कल्याण करना है। फिर अन्यों का क्यों? अन्यों का क्या होगा? जो मछली है, मानवतावाद का प्रचार करेंगे लेकिन मछली खाएंगे, है ना? पशुओं को काट के खाएंगे तो फिर कैसे कल्याण करेंगे सबका? परोपकारवाद, इसमें क्या इंद्र तृप्ति? सबके लिए कल्याण कर रहे हैं ना। अभी इसमें ना तो राष्ट्रवाद है ना मानवतावाद है। परोपकारवाद सबका कल्याण चाहते हैं, मछलियों का भी चाहते हैं, हम शाकाहारी भी हैं, पंछियों का चाहते हैं भला, वृक्षों का भला चाहते हैं, पर्वतों का भला चाहते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कार्य करते हैं, हम विश्व में शांति चाहते हैं, सबको धनी बनाना चाहते हैं, सबको सुखी बनाना चाहते हैं, फिर भी ये इंद्र तृप्ति कैसे हो गया? श्रीधर, पहली बात ये है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि वास्तव में सबके हितैषी कौन है? केवल भगवान ही है और हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। तो जब परोपकारवादी व्यक्ति सोचता है मैं सबका कल्याण करने जा रहा हूँ, वो कृष्ण का स्थान लेने जा रहा है, वो सोचता है कि मैं सबका भलाई करूंगा, ये एक भाव होता है। दूसरी गलती क्या है परोपकारवाद में? मैं केंद्र, क्योंकि मैं सबका भलाई करूं, वो पहले पॉइंट में आ गया। मैं भला कर रहा हूँ सबका। हाँ, सबको वो एक कमी है उसके अंदर, लेकिन वो, लेकिन उसके विचार में क्या गलती है और क्या दोष है इस परोपकारवाद में? एक तो ये है कि व्यक्ति अपने आप को मैं सबको भला कर सकता हूँ, दूसरा दूसरा दोष मान प्रतिष्ठा भी चाह सकता है, ठीक है ये भी हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मैं केवल लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ, पशुओं के लिए, वृक्षों के लिए, वो पहले पॉइंट में आ गया। ये सब शारीरिक बुद्धि पर आधारित है, हम कल्याण करना चाहते हैं लेकिन कल्याण क्या है, परोपकार क्या है ये नहीं मालूम, हम परोपकार को शरीर का उपकार समझते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा की भलाई किसमें है, हर एक व्यक्ति की भलाई किस चीज में है ये नहीं ज्ञान है। तो जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वो अन्य शरीरों की मदद करना चाहते हैं, बाह्य रूप से सब कुछ बदलना चाहते हैं, सोचते हैं कि शरीर का भला करने से भलाई सब जगह हो जाएगा, परंतु वो इस बात को नहीं जानते हैं कि ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, भले वो सूक्ष्म या स्थूल हो, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम आत्मा है और जब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होगी तब तक लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो परोपकारवाद भी इंद्रिय तृप्ति है, इसमें भी दोष है, ठीक है ना। तो जो जीव भगवान की सेवा करता है भगवान के दिव्य शक्ति का आश्रय लेके, वो महात्मा कहलाता है, ऐसा महात्मा विशाल हृदय का रहता है क्योंकि वो भगवान की सेवा करता है। तो यहाँ की सेवा, किसी की सेवा करना ये कृपण है और भगवान की सेवा करना विशाल है, क्यों, जो राष्ट्रवादी का राष्ट्रवादी है, मानवतावादी है, परोपकारवादी है वो कृपण बुद्धि का है, और जो भगवान भगवतवादी है वो विशाल हृदय का है, क्यों ऐसे। भक्ति रसामृत सिंधु में के आमुख में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमारी जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, विस्तार होता है। एक बच्चा जो होता है वो केवल अपने इंद्रियों के बारे में सोचता है, भले दूसरे को कष्ट हो ना हो, वो अपनी मांगों को पूरा करना चाहता है, खाना मिलना चाहिए, ये होना, जो भी है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है, फिर अपने मित्रों के बारे में, समाज के बारे में सोचता है, ऐसे धीरे 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 उसकी दृष्टि और विस्तारित होती जाती है, और सबसे ज्यादा विस्तार होना फिर वो परोपकारवादी हो जाता है। पहले है केवल अपने इंद्रियों के बारे में, शरीरवादी, परिवारवादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी या जातिवादी, फिर मानवतावादी, परोपकारवादी, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ के कोई सोचता है सारे ब्रह्मांड का भला होना है, और ऐसे दृष्टि बढ़ती 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 जाती है, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड किसके अंदर है, श्री कृष्ण के अंदर है। तो जो श्री कृष्ण की सेवा करता है उसका हृदय विशाल है, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे विशाल है, और कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा होती है, जैसे कि जड़ पे पानी डालने से सारे पेड़ को पानी मिल जाता है, इसलिए यहाँ विशाल हृदय का है, क्योंकि श्री कृष्ण में सब कुछ है, कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है, श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबसे विस्तारित रूप की सेवा है कृष्ण की सेवा, और जो संकुचित हृदय के होते हैं वो इंद्र तृप्ति करते हैं। उनमें से भी श्रेणी होते हैं, जो परोपकारवादी है वो सबसे श्रेष्ठ है इनमें से, उसके कम फिर मानवतावादी, उसके नीचे राष्ट्रवादी, उसके नीचे जातिवादी, उसके नीचे परिवारवादी, उसके नीचे स्वयं शरीरवादी, केवल मेरे लिए, परिवार का भी नहीं देखना। जैसे अवंती ब्राह्मण था ना, बहुत पैसा था लेकिन परिवार को भी नहीं देता था, सब छुपा के रखता था, कृपण, संकुचित हृदय का। तो जहां तक भौतिकवादी लोग हैं, उनमें से परोपकारवादी जो है तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी वो भी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है सूक्ष्म स्तर पे, इसलिए वो भी संकुचित हृदय वाला कहलाता है। और जो भक्त होते हैं वो विशाल हृदय के कहलाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सब भौतिक दृष्टि से भले अच्छे क्यों न हो, परंतु इनका आध्यात्मिक कोई मूल्य नहीं होता है। राष्ट्रवादी, परोपकारवादी, मानवतावादी वाद, ये सब तो केवल जो भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल वही मात्र महात्मा कहलाता है। हाँ, आगे बढ़िए। ठीक है, तो संकुचित हृदय के व्यक्ति के लिए और एक नाम क्या है? दुरात्मा। और विशाल हृदय महात्मा। तो ये याद रहेगा ना, विशाल हृदय महात्मा, संकुचित हृदय दुरात्मा। विशाल हृदय वाले किसके शरण में है? अंतरंगा शक्ति। और संकुचित हृदय वाला बहिरंगा शक्ति के। ठीक है, ये चार्ट है ना, ठीक है। भगवान कृष्ण की तीन शक्तियां अंतरंगा, अंतरंगा आ होना चाहिए, हाँ, अंतरंगा शक्ति। पेन है अभी? अच्छा, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो तटस्था शक्ति है जीव, ठीक है, जीव है ये, तटस्था शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप कौन है? महामाया देवी या दुर्गा देवी। और अंतरंगा शक्ति के स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी। तो जीव या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन होता है या बहिरंगा शक्ति के अधीन, ठीक है। जीव को दो ही रास्ते हैं, कौन से दो रास्ते हैं गोकुलानंद? यहाँ क्या लिखा है? जीव को कौन से दो आश्रय हैं? एक बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति, दोनों में से एक का आश्रय लेना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जीव का कोई आश्रय ही नहीं है, कि जीव ही स्वतंत्र रहेगा, न अंतरंगा न बहिरंगा के आश्रय में रहेगा, अकेला रहेगा, संभव नहीं है, क्योंकि जीव तटस्था है। तो जीव को अंतरंगा या बहिरंगा, इन दोनों के नीचे रहना ही पड़ेगा। तो बहिरंगा शक्ति कौन देखती है? विशाल
विशाल हृदय वाला बनना चाहिए। दुर्गा देवी या महामाया देवी, और अंतरंगा शक्ति कौन है? उत्पल, राधा रानी या लक्ष्मी देवी। तो जब जीव राधा रानी या लक्ष्मी देवी का आश्रय लेता है तो उसे क्या कहते हैं रेनगौड़ा? जब जीव राधा रानी या लक्ष्मी देवी का आश्रय लेता है अर्थात अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेता है तो उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। और जब जीव महामाया देवी या दुर्गा देवी का आश्रय लेता है तो उसे क्या कहते हैं गोविंद कुंड? दुरात्मा। तो दुरात्मा का हृदय कैसे रहता है? संकुचित। महात्मा का हृदय कैसे रहता है? विशाल। तो जो अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं उनका कार्य क्या होता है? भक्तिमय सेवा। और जो बहिरंगा शक्ति के अधीन होते हैं उनका कार्य क्या होता है? इंद्र तृप्ति। ठीक है बस अभी यही समाप्त करते हैं। अभी जाके हमें प्रसाद लेकर तृप्त होना है। तो ये अंतरंगा शक्ति के अधीन आता है या बहिरंगा के? अंतरंगा शक्ति। परंतु हम जिह्वा वेग में भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बताते हैं? आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए और केवल जिह्वा के लिए प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है हरे कृष्णा।